एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
कहते हैं यीशु इस दुनिया में दया से बढ़ के भक्ति न कोई। कहते हैं यीशु इस दुनिया में दया से बढ़ के भक्ति न कोई। इंसान में कोई फर्क नहीं, इंसानों में कोई फर्क नहीं, न कोई ऊंचा नीचा न कोई, हाँ नीचा न कोई। कहते हैं यीशु इस दुनिया में दया से बढ़ के भक्ति न कोई।
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उसे प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हमारे मनों को तू खोल दे और हमें तेरे वचनों को समझने के लिए मदद कर। मेरे श्रोताओं के संग विशेष रूप से हो और उन्हें बहुतायत से आशीष दे और मेरे संग हो। मुझे तेरा पवित्र आत्मा दे पिता, कि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ के साथ बोल सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन ग्रहण कर, आमीन। प्रियो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है परमेश्वर का पुत्र का अवतरण। जंगल जहरीले सांपों का पूरा स्वप्न बन गया था। सांप खाना पकाने के बर्तनों के नीचे रेंगते तथा तंबू के खूंटे से लिपटे पड़े थे। वे बच्चों के खिलौने में छिपकर बैठे थे, फूस के बिछौने में छुपे थे। उनके विषैले दांत गहराई तक अंदर जाकर घातक जहर छोड़ देते थे। जंगल जो कभी इज़राइल का शरण स्थान था, उनका कब्रिस्तान बन गया। सैकड़ों मर रहे थे। अपनी हालत को देखकर डरे हुए माता पिता मदद की गुहार लगाते हुए मूसा के तंबू तक पहुँचे। तब मूसा ने उनसे उनके लिए प्रार्थना की, जिसे हम विनती 21 का 7 में पढ़ते हैं। फिर परमेश्वर का क्या उत्तर मिला कि एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंभे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। सांप हमेशा से शैतान का प्रतीक रहा है। हम इसे उत्पत्ति 3 में पढ़ सकते हैं, प्रकाशित वाक्य 12 में भी पढ़ते हैं, और पाप का प्रतिनिधित्व करता है। शिविर शैतान के हाथों में चला गया था। तब परमेश्वर का क्या समाधान था? पवित्र स्थान की वेदी पर एक मेमने को नहीं बल्कि एक कांस्य सर्प को निहारना था। यह मसीह का एक अद्भुत चिन्ह था, जिस प्रकार उन डसने वाले सांपों का प्रतिरूप एक खंभे पर टांगा गया था। यीशु को अपराध पापमय शरीर की सामना में रोमियो 8:3 के अनुसार उसी रीति से उस शर्मनाक क्रूस पर चढ़ाया जाना था। यहूना 3:14-15 में हम यह पाते हैं। वह पाप बना उन सभी के पापों को अपने ऊपर लेते हुए जो पहले जीवित थे या आगे जीवित रहेंगे। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यह प्रतिज्ञा हम 2 कुरिन्थियों 5:21 में पाते हैं। मसीह को देखकर आशाहीन मानवता जीवन पा सकती है। अवतरण किस प्रकार से मानवता के लिए उद्धार ला सकता था? पुत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? परमेश्वर मनुष्य कैसे बन सकता और क्यों आवश्यक था? आइए इसके बारे में हम सीखें। भविष्यवाणी एवं पूरा होना। परमेश्वर की योजना उन लोगों को छुड़ाने के लिए जो उसके ज्ञानपूर्ण सुझाव से भटक गए थे। यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 1:9 दृढ़ता से उसके प्रेम को प्रदर्शित करती है। इस योजना में उसके पुत्र का जगत की उत्पत्ति के पहले से पाप के लिए बलिदान होना और मानव जाति के लिए आशा बनना तय था। 1 पत्रस 1:19-20। उसे हमें परमेश्वर के पास वापस लाना था और शैतान के कामों को नाश करते हुए हमें पाप से मुक्ति दिलाना था। 1 पत्रस 3:18 और मत्ती 1:21 तथा 1 यूहन्ना 3:8। पाप ने आदम व हवा को जीवन के स्रोत से काट दिया था, जिसका परिणाम तत्काल मृत्यु होना था। परंतु जगत की उत्पत्ति से पहले रची योजना के अनुसार, जो हम 1 पत्रस 1:19-20 में पाते हैं, मेल की सम्मति 6:13, परमेश्वर पुत्र खाई को पाटने व मृत्यु को रोकने के लिए उनके और दिव्य न्याय के बीच आया। क्रूस से पहले भी उस समय उसके अनुग्रह ने पापियों को जीवित रखा एवं उन्हें उद्धार का आश्वासन दिया। परंतु हमें पूर्ण रूप से परमेश्वर के बेटे बेटियों के रूप में पुनर्स्थापित करने के लिए उसे मनुष्य बनना पड़ा। आदम और हवा के पाप करने के पश्चात परमेश्वर ने उन्हें प्रतिज्ञा द्वारा आज्ञा दी कि वह स्त्री और सर्प के बीच, तेरे वंश और उसके वंश के बीच में अलौकिक शत्रुता उत्पन्न करेगा। उत्पत्ति 3:15 के गुप्त कथन में सर्प और उसके वंश शैतान व उसके अनुयायियों को दर्शाता है। स्त्री और उसका बीज परमेश्वर के लोग एवं संसार के मुक्तिदाता का प्रतीक है। यह कथन पहला आश्वासन था कि अच्छाई और बुराई के बीच का विवाद परमेश्वर के पुत्र की जीत में समाप्त होगा। यद्यपि यह जीत दर्द भरी होगी, वह उद्धारकर्ता तेरे शैतान के सर को कुचल डालेगा और तू शैतान उस उद्धारकर्ता की एड़ी को डसेगा। उत्पत्ति 3:15। कोई भी सकुशल नहीं निकलेगा। उसी क्षण से मानव जाति को उस प्रतिज्ञा किए हुए की प्रतीक्षा थी। पुराना नियम उस खोज को प्रकट करता है। भविष्यवाणियों ने पहले से ही बता दिया कि जब वह प्रतिज्ञा किया हुआ आएगा, संसार के पास उसकी पहचान की पुष्टि करने के लिए साक्ष्य उपलब्ध होंगे। भविष्य में आने वाले उद्धार का नाटकीय रूप से प्रकट किया जाता है। पाप के प्रवेश करने के बाद परमेश्वर ने आने वाले उद्धारकर्ता के विशेष कार्य को समझाने के लिए पशु बलि की स्थापना की। इसे हम देख सकते हैं उत्पत्ति 4:4 में। इस प्रतीकात्मक प्रणाली ने परमेश्वर पुत्र द्वारा पाप को मिटाने के तरीके को नाटकीय रूप दिया। पाप के कारण परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन मानव जाति ने मृत्यु का सामना किया। उत्पत्ति 2:17-3:19 तथा 1 यूहन्ना 3:4 और रोमियो 6:23 में हम इस बात को पाते हैं। परमेश्वर की व्यवस्था ने पापी की जान की मांग की, परंतु अपने असीम प्रेम में परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। दया का क्या ही अतुलनीय कार्य। परमेश्वर अनंत पुत्र स्वयं पापी के स्थान पर पाप का दंड भुगतान करता है ताकि वह हमें क्षमा प्रदान कर सके और परमेश्वर के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। इज़राइल के मिस्र से निर्गमन के पश्चात परमेश्वर और उसके लोगों के बीच एक वाचा के संबंध के रूप में बलिदान की भेंट का आयोजन निवास स्थान में किया जाता था। स्वर्गीय नमूने के अनुसार मूसा द्वारा निर्मित पवित्र स्थान और उसकी सेवाओं को उद्धार की योजना को चित्रित करने के लिए स्थापित किया गया था। इसे हम पाते हैं निर्गमन 25:8-9-40 में तथा इब्रानियों 8:1-5 में। क्षमा प्राप्ति के लिए एक पश्चातापी पापी एक निष्पाप उद्धारकर्ता के प्रतिनिधि के रूप में एक दोष रहित होम बलि पशु लाता था। पापी फिर निर्दोष जानवर पर अपना हाथ रखकर अपने पापों का अंगीकार करता था, जिसे हम लेवीवस्था 1:3-4 में पाते हैं। यह कार्य पाप का दोषी पापी से निर्दोष बलि पर हस्तांतरण का प्रतीक था, जो बलिदान के स्थानापन स्वभाव का वर्णन करता है, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं, इब्रानियों 9:22 कहती है। पाप का घातक स्वभाव स्पष्ट करते हुए पापी फिर उस पशु का वध कर देता था। आशा को व्यक्त करने का एक दुखद तरीका, परंतु पापी के लिए विश्वास व्यक्त करने का एकमात्र तरीका था। याजकीय सेवकाई के पश्चात लेवीवस्था 4:7 हम पढ़ सकते हैं, पापी को आने वाले उद्धारकर्ता की स्थानापन मृत्यु में विश्वास के माध्यम से क्षमा मिलती, जिसका प्रतीक वह पशु बलि थी। लेवीवस्था 4:26-31-35। नया नियम यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र को परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है, यूहन्ना 1:29 के रूप में पहचाना जाता है। उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा एक निर्दोष और निष्कलंक मेमने के समान, 1 पत्रस 1:19, उसने मानव जाति के लिए पाप के परम दंड से छुटकारा प्राप्त किया। एक उद्धारकर्ता के विषय में भविष्यवाणियां की गई थी पुराने नियम में। पवित्र परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि उद्धारकर्ता मसीहा अभिषिक्त किया हुआ अब्राहम के वंशज में से आएगा। तेरे वंश में पृथ्वी की सारी जातियां धन्य होंगी, उत्पत्ति 22:18। और हम इसे तुलना कर सकते हैं उत्पत्ति 12:3 से। यशायाह ने यह भविष्यवाणी की कि उद्धारकर्ता एक नर बालक के रूप में आएगा और दोनों मानव और दिव्य होगा, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यशायाह 9:6 के अनुसार यह उद्धारकर्ता दाऊद की राजगद्दी पर विराजमान होगा और शांति के अनंत राज की स्थापना करेगा। यशायाह 9:7 बैतलहम उसका जन्म स्थान होगा। मीका 5:2 में हम यह भविष्यवाणी पढ़ते हैं, इस दिव्य मानव व्यक्ति का जन्म अलौकिक होगा, यह भविष्यवाणी किया गया था। यशायाह 7:14 का हवाला देते हुए नया नियम कहता है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। मत्ती 1:23 उद्धारकर्ता का विशेष कार्य इन शब्दों में प्रस्तुत है जो हम यशायाह 61:1-2 में पाते हैं। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। इसकी तुलना हम लूका 4:18-19 से कर सकते हैं, जहां पर हम इन वचनों को फिर से पाते हैं। आश्चर्यजनक रूप से मसीहा को अस्वीकरण सहना पड़ा, उसे निर्जल भूमि में उपजे हुए जड़ के समान देखा जाएगा। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना ही उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह दुष्ट जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुझ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। यह भविष्यवाणी हम पढ़ते हैं यशायाह 53:2-4 में। चांदी के मात्र 30 सिक्कों के लिए, जिसे हम जकरिया 11:2 में पाते हैं, एक परम मित्र उसके साथ विश्वासघात करता है। भजन संहिता 41:9 उसकी सुनवाई के समय उसे मारा जाएगा व उस पर थूका जाएगा। यशायाह 50:6 जिन लोगों ने उसे मृत्युदंड दिया वे ही उसके पहने हुए कपड़ों को आपस में बांटेंगे। भजन संहिता 22:18 उसकी कोई भी हड्डी नहीं टूटेगी। भजन संहिता 34:20 परंतु उसकी पसलियों को भेदेंगे। जकरिया 12:10 इतनी पीड़ा में भी वह विरोध ना करेगा, परंतु जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय व भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। यशायाह 53:7 निर्दोष उद्धारकर्ता पापियों के लिए अत्यधिक पीड़ा सहेगा। निश्चित उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर तारना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधम का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध लेने के समय और भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवतों में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। यशायाह 53:4-8 में यह भविष्यवाणी मिलती है। जब यीशु मसीह इस जगत पर आए, बहुत से लोग उसे नहीं पहचाने, पर थोड़े लोग ही उसे पहचाना और अपनाया। आज भी बहुत से लोग उसे नहीं पहचानते हैं, नहीं मानते हैं, पर वह भविष्यवाणी के अनुसार हमारे लिए मनुष्य बनकर आया और मानव जाति के पापों के लिए मरा। वह हमारे अपराधों के कारण ही दुख सहा। परमेश्वर अनंत पुत्र यीशु मसीह में अवतरित हुआ। वास्तव में अनंत काल का परमेश्वर वह वास्तव में मनुष्य भी बना। यीशु जो मसीह है वह कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। वह हमारे स्थान पर एवं हमारे पापों के लिए क्रूस पर स्वेच्छा से पीड़ित हुआ और मर गया और मृतकों में से जिलाया गया। वह हमारे लिए आया। आइए हम उसे अपनाएं और उद्धार पाएं और अनंत जीवन पाएं। परमेश्वर पिता हम सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तेरे पुत्र हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह के लिए हम तेरी उपासना करते हैं। हम प्रभु यीशु को अपनाते हैं, हमारा उद्धार कर और अनंत जीवन दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण कर, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudaven.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।